दूसरा इतिहास अध्याय 25, अध्याय 25 पद 1 से लेकर 3 तक। जब अमसया योआश का पुत्र राज्य करने लगा तब वो 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 29 वर्ष तक राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम यहू आदान था जो यरूशलेम की थी। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है परंतु खरे मन से ना किया। जब राज्य उसके हाथ में स्थिर हो गया तब उसने अपने उन कर्मचारियों को मार डाला जिन्होंने उसके पिता को मार डाला था। वास्तव में उसके पिता को अंत में उसके कुछ सेवकों ने मार डाला था, इसलिए उसने उन सेवकों को मार डाला जिन्होंने उसके पिता को मारा था। अध्याय 25 पद 4। परंतु उसने उनके लड़के वालों को ना मारा क्योंकि उसने यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार किया जो मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है कि पुत्र के कारण पिता ना मार डाला जाए और ना पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। अमसया ने यहूदा के सब लोगों को इकट्ठा किया और उन्होंने एदोमियों के विरुद्ध अभियान शुरू किया। वे इस अभियान में एदोमियों के विरुद्ध सफल रहे। अध्याय 25 पद 7। परंतु परमेश्वर के एक जन ने उसके पास आकर कहा, यह युद्ध से पहले की बात है क्योंकि राजा ने मुद्रा का कुछ भाग व्यय किया था, 100 चांदी की मुद्राएं, और उसने 100,000 लोगों को इसराइल से मांगा था कि उनके साथ एदोमियों के विरुद्ध चले। इसलिए परमेश्वर के जन ने आकर कहा, तू क्यों मनुष्य के बुझबल पर भरोसा करता है? तुझे परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। उन्हें घर वापस भेज दे, उन्हें अपने साथ युद्ध में नहीं ले जाना चाहिए। उसने उत्तर दिया, ठीक है, मैं क्या करूं, मैं पहले ही 100 चांदी की मुद्राएं दे चुका हूं। उसने कहा, भूल जाओ, मानो तुम्हारी हानि हो गई, उन्हें वापस भेज दो, उन्हें युद्ध में तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। उसने परमेश्वर के नबी की बात सुनकर इसराइलियों को घर वापस भेज दिया। वे लोग क्रोधित हो गए और उन्होंने यहूदा के शहरों को जो मार्ग में पड़ते थे लूट लिया। परंतु अमसया एदोमियों के विरुद्ध गया और परमेश्वर ने एदोमियों को उसके हाथ में कर दिया। परंतु मूर्ख मनुष्य, उसने एदोमियों की देवताओं को उठा लिया, छोटे देवता, और उन्हें लाकर अपने घर में लगा दिया और उनकी उपासना करने लगा जो एदोमियों के देवता थे। अध्याय 25 पद 15 से लेकर 17 तक। तब यहोवा का क्रोध अमसया पर भड़क उठा और उसने उसके पास एक नबी भेजा जिसने उससे कहा, जो देवता अपने लोगों को तेरे हाथ से बचा न सके उनकी खोज में तू क्यों लगा है? वो उससे कह ही रहा था कि उसने उससे पूछा, क्या हमने तुझे राजमंत्री ठहरा दिया है? चुप रह, क्या तू मार खाना चाहता है? तब वो नबी ये कहकर चुप हो गया कि मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने तुझे नाश करने को ठाना है क्योंकि तूने ऐसा किया है और मेरी सम्मति नहीं मानी। तब यहूदा के राजा अमसया ने सम्मति लेकर इसराइल का राजा योआश के पास, जो येहू का पोता और यहो आहास का पुत्र था, जो कहला भेजा कि आ हम एक दूसरे का सामना करें। इसराइल के राजा योआश ने वापस संदेश भेजा और कहा, देखो तुमने वहां जाकर एदोमियों पर विजय पाई है, अब आराम से घर में रहकर आनंद करो। तुम क्यों अपनी हानि कराने की सोचते हो? दूसरे शब्दों में, अपनी विजय से जो तूने एदोमियों पर पाई है संतुष्ट रह और मुसीबत को मत ढूंढ। तुम क्यों अपनी हानि को सोचते हो? अध्याय 25 पद 20। परंतु अमसया ने ना माना, उसने कहा कि वे सामने आकर मिले। इसलिए इसराइल का राजा योआश बेतशेमेश में उसके सामने आया। अमसया और उसकी सेना डर गई, इसराइल के राजा योआश ने यरूशलेम में आकर यरूशलेम की दीवार एप्रेम से लेकर कोने के द्वार तक तोड़ डाली, जो करीब 600 फीट थी। अध्याय 25 पद 24 से लेकर 27 तक। और जितना सोना चांदी और जितने पात्र परमेश्वर के भवन में ओबेद एदोम के पास मिले और राजभवन में जितना खजाना था, उन सबको और बंधक लोगों को भी लेकर वो शमरोन को लौट गया। यहोआहाज के पुत्र इसराइल के राजा योआश के मरने के बाद योआश का पुत्र यहूदा का राजा अमसया 15 वर्ष तक जीवित रहा। आदि से अंत तक अमसया के और काम क्या यहूदा और इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? जिस समय अमसया यहोवा के पीछे चलना छोड़कर फिर गया था, उस समय से यरूशलेम में उसके विरुद्ध द्रोह की गोष्ठी होने लगी और वो लाकिश को भाग गया। सो दूतों ने लाकिश तक उसका पीछा करके उसको वही बार डाला। क्यों तू अपनी हानि के लिए हस्तक्षेप करता है? ये वास्तव में एक अच्छी चेतावनी है, क्योंकि बहुत बार लोग ये समझते हैं कि वे पाप से हस्तक्षेप कर सकते हैं और उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे समझते हैं कि वो आग से खेल कर भी न जलेंगे। ये रुचिकर है कि हमारी विजय के तुरंत बाद खतरे उत्पन्न होते हैं। एक विशाल विजय पाना खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि बहुत बार जब हम विजय में डूबे होते हैं, तब हम अपने शरीर पर भरोसा करने लगते हैं। हम बाहर जाकर कष्टों को न्योता देते हैं और परीक्षा को ढूंढते हैं कि उस पर विजय पाए। अपने आप को परीक्षा या संकट में डालते हैं ताकि ये दिखाएं कि हम कितने बलशाली हैं। हम उन चीजों में हस्तक्षेप करते हैं जिससे हमारा संबंध भी नहीं है। हम उस स्थान पर जाते हैं जहां हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। व्यर्थ हस्तक्षेप से हमें हानि होती है। वे लोग हार गए, परंतु इतना ही नहीं, उनकी सुरक्षा का एक भाग तोड़ दिया गया। राजा ने आकर यरूशलेम की दीवार का एक भाग ढा दिया। जब आप परीक्षा में पड़ते हैं तो आपकी सुरक्षा का एक भाग नष्ट हो जाता है। एक बार आप सफल हुए, वो वास्तविक युद्ध था। आप थोड़े समय स्थिर रहे, परंतु जब आप परीक्षा में पड़े तब आपकी सुरक्षा का एक भाग नष्ट हो गया। अगली बार आपके पास स्थिर रहने का वो बल नहीं रह जाता। आपको ऐसा लगता है कि आप कर लेंगे, क्योंकि आप पहले ऐसे कर चुके हैं, परंतु भीतरी शक्ति उतना नहीं रह जाती। दूसरी बार में गिरना सहज हो जाता है और तीसरी बार अधिक सहज, क्योंकि आपकी सुरक्षा का एक भाग जाता रहा। इस प्रकार वे खजाना लूट ले गए। जब कभी शैतान तुम्हें हराता है, वो कुछ खजाना अवश्य ले जाता है। पवित्रता और निर्दोषता का खजाना, इसे कहते हैं स्वयं की हानि के लिए हस्तक्षेप करना। पाप से हस्तक्षेप मत करो, पाप के स्थानों पर हस्तक्षेप मत करो, ये दिखाने के लिए कि आप कितने बलशाली हैं, आप कितने कठोर हैं या आप कितने धर्मी हैं। शत्रु के क्षेत्र में युद्ध के लिए मत जाओ। बहुत से लोग हस्तक्षेप करने के कारण हानि उठा चुके हैं।